والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلات و السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دو دوست کہیں سفر پر جہاز میں روانہ ہوئے تو ان کے درمیان والی سیٹ پر ایک موٹے جسم والا اور بڑا بھدا سا آدمی یہ بیٹھ گیا جس کے منہ سے ناگوار بو آ رہی تھی. ایک دوست کھڑکی کی طرف سمٹ گیا اور سارا راستہ شدید ٹینشن میں رہا، جبکہ اس کے برعکس دوسرے دوست نے اپنی پسندیدہ کتاب کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا. یہ کسی بھی طرح پریشان دکھائی نہیں دے رہا تھا، بڑے پرسکون انداز میں اس نے اپنا سفر جو ہے وہ طے کر لیا، حالانکہ وہ بھی اسی موٹے آدمی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، بدبو اسے بھی آ رہی تھی، مگر انتہائی پرسکون حالت میں وہ اپنا سفر اس نے پورا کر لیا. 40 منٹ کے بعد جب سفر ختم ہوا اور یہ دونوں باہر نکلنے لگے تو جس نے یہ 40 منٹ ٹینشن میں گزارے تھے اس نے دوسرے سے پوچھا کہ یار بڑی حیرت کی بات ہے، تم بڑے مزے سے کتاب پڑھ رہے تھے جیسے کسی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہیں اس جو ہمارے بیچ میں موٹا بیٹھا تھا اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی؟ کہنے لگا کہ شروع میں ہوئی تھی، مگر میری عادت ہے کہ جب کوئی ٹینشن ہوتا ہے، آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو میں حساب لگا لیتا ہوں کہ اس کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے، ये कितना दिन, कितना घंटा, कितने मिनट रहेगा। तो जब मैंने देख लिया कि भाई 40 मिनट टेंशन रहेगा ये, तो अब बजाय मैं इस पर शोर शराबा करूं या अपने आप को और टेंशन में लाऊं, तो मैंने कहा यार ये 40 मिनट अच्छे पास कैसे होंगे, तो इसलिए किताब खोल के पढ़ता रहा, मेरा वक्त गुजर गया। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान की जिंदगी जो है ये दुख सुख इसका मजमुआ है। कभी तो ऐसी खुशियां होती हैं कि बल्ले बल्ले मौज ही मौज लगी पड़ी होती है। जिस काम में जा रहे हैं तो उड़े जा रहे हैं, जिस काम को हाथ लगाते हैं तो ओहो मौज ही मौज लगी पड़ी है। कभी खुश होता है, निहाल होता है, तो कभी परेशानी से बदहाल होता है। लेकिन ये हकीकत है कि न खुशी हमेशा रहती है न परेशानी। तो आखिर वजह क्या है कि इंसान परेशानी में अक्सर अपने होशो हवास खो बैठता है। शायद इसकी वजह ये बन सकती है कि जिसको परेशानी लाहिक होती है ना, जिसको परेशानी लायक होती है, वो ये नहीं देखता कि माजी में कितनी परेशानी आई है। भाई कभी बीमार हुआ तो क्या जिंदगी में पहली मरतबा हुआ है? ना, वो जिंदगी में बीमारियां तो होती ही रही, बल्कि शायद अपने अम्मी अब्बा से पूछे तो कहे कि भाई तू जब पैदा हुआ था ना और उस वक्त जो तू बीमार हुआ था तो हमसे समझे गए तो, लेकिन तू तो भाई मौत के मुंह से वापस आए हैं। तो बीमार होता है इंसान, तो क्या पहली मर्तबा हुआ? नहीं, पहले भी हुआ था। तो पता चला कि ये बीमारी अगर आई है तो पहले भी आई थी, पहले चली गई तो अभी चली जाएगी। परेशानी कारोबार में हो गई, क्या पहली मर्तबा हुई है? नहीं, पहले भी हुई थी। पहले हुई थी तो क्या हुआ, परेशानी खत्म हो गई, तब भी खत्म हो जाएगी। तो पता चला कि जो माजी में भी परेशानी आई थी वो चली गई, तो ये परेशानी भी चली जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि परेशानी का एक एंडिंग टाइम होता है, इख्तितामी वक्त होता है, मगर ये पहलू हमारी नजर से ओझल रहता है। और हम बसा औकात इस तरह के मामलात जब दरपेश होते हैं तो हम आखिर हिम्मत हार बैठते हैं। और कई ऐसे तजर्बात जिंदगी में हमने भी देखे हैं, लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने हौसला पकड़ा, हिम्मत पकड़ी, तो बसा औकात वो उस मुश्किल से बआसानी खूबी निकल गए। और बड़ी मशहूर वो हिकायत वाकया तो हम बचपन से सुनते रहे कि एक बादशाह जिसके मुल्क पर दुश्मनों ने हमला किया और बड़ी ऐशो इशरत और आसानियों वाली जिंदगी गुजार रहा था, दुश्मन ने हमला किया यहां तक के उसकी बादशाह छीन ली गई, उसके मालो असबाब को लूट लिया गया, उसकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, कैद कर लिया गया, और ये बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा और मुख्तलिफ गारों में पना लेता 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 एक गार में छुप कर बैठ गया। एक दिन उसने देखा कि एक चींटी जो है वो अपनी खुराक का एक दाना लेकर जमीन से दीवार पर चढ़ने लगी अपने सुराख की तरफ, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ी तो गिर पड़ी। उसने देखा, फिर चींटी ने कोशिश की, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ी फिर गिरी। छह मर्तबा उसने कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। सातवीं मर्तबा जब कोशिश की तो अपने सुराग में पहुंच गई। बादशाह सोचने लगा कि ये मामूली सा एक जानवर है, कीड़ा है, इसने ये कोशिश की तो अपनी मंजिल को पा लिया, मैं तो इंसान हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मैं दोबारा अपनी बादशाह नहीं ले सकता। तो किताबों में लिखा है कि उसने फिर कोशिश करके अपने साथियों को जमा किया, हमला किया नाकाम हुआ, छह मर्तबा हमला किया नाकाम हुआ, सातवीं मर्तबा अपनी बादशाह वापस ले ली। तो पता चलता है कि इंसान के अंदर अगर हौसला बढ़ जाए ना, हिम्मत आ जाए, तो बसा औकात वो बहुत सारे मामलात को फेस कर लेता है اور ظاہر ہے زندگی کا ایک سفر ہے. جو انسان اپنی زندگی بچپن میں گزارتا ہے وہ نوجوانی کے عالم میں تھوڑی چینج آتی ہے. جوان ہوتا ہے پھر چینج ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے پھر چینج ہوتا ہے, بچے آتے ہیں پھر چینج ہوتا ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں پھر چینج ہوتی ہے, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں پھر چینج آتا ہے. تو زندگی کا یہ پورا سرکل ہے. انسان یہ سوچے کہ جس طرح میں بچپن میں آزاد تھا, ٹینشن فری تھا, تو زندگی بھر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے بھائی. جب آپ نے اتنے بکھڑے پالے ہیں تو ظاہر ہوگا یہ سارا کاروبار نہیں تھا آپ کو, ابا جان جو ہے وہ مہینے کی پاکٹ منی دیتے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں تھا کہ ظاہر ابو آئیں گے مہینے کا آئے گا تو میری پاکٹ منی مجھے ملے گی, میں اپنا کام کروں گا. لیکن جب آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے اور دکان کھولنے کے بعد آپ کو سارے معاملات دیکھنے کہ آج دھندا کیا کرنا ہے, شام کو پیمنٹ کیا کرنی ہے, تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے بسا اوقات جو ہے وہ ہم اپنی زندگی یہ فضول میں ٹینشن میں مطلب وہ کر لیتے ہیں. جیسے بعض اوقات گھر میں صبح اٹھے تو آواز لگائے میری چابی کہاں ہے. اب وہ چابی بھائی آپ کی ہے نا, آپ نے رکھنی تھی نا, اب وہ پورے گھر میں شور مچ رہا ہے, میری چابی نہیں مل رہی. تم لوگ کوئی چیز ٹھکانے نہیں رکھتے, تولیا کہاں ہے, میرا چارجر کہاں ہے. یہ سارے تماشے گھروں میں ہوتے ہیں. یہ وقت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے, لیکن ہمارا مس بیہیو, ہمارا غیر ضروری شور شرابہ, ہمارا فضول کا جو انداز ہے, رف انداز, یہ کئی ایک کو جو ہے وہ ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے. بلکہ کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ پرانے دور میں جب شپ چلتے تھے سفر مدینہ کے لیے, اور ظاہر وہ حاجی جو ہے وہ تین چار مہینے کے بعد یہ واپس آتے تھے, تو ایک مرتبہ حج سے واپسی ہوئی حاجیوں کی. اب ظاہر جب وہ سفر ہوتا تھا تو راشن تو ہر چیز وہ حاجی لے کے ہی جاتے تھے یہاں سے, تو ایک حاجی صاحب جو ہے وہ اپنی حجن کے ساتھ گئے تھے بڑے میاں, تو وہ حاجی صاحب جو ہے ان کا سامان اتر رہا تھا. اب ظاہر خاندان کے لوگ بھی آئے تھے, حاجی صاحب کا سامان اتر رہا تھا, حاجی صاحب کو کنستر نہیں مل رہا تھا, جو ڈبا تھا ان کا ایک کوئی ٹین کا. اب حاجی صاحب شور مچا رہے ہیں, وہ حجن جو تھی وہ بڑی پریشان تھی, وہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, جہاں جہاں سامان تھا سب ڈھونڈ لیا. حاجی صاحب شور پہ شور مچا رہے ہیں, میرا کنستر میں نے تمہیں وہیں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں رہنا چاہیے, تم لوگوں کو کوئی پتا نہیں ہے, تم عقل نہیں ہے نہ فلانا نہیں ہے. وہ سارا خاندان دوڑ بھاگ کر رہا ہے, حاجی صاحب کا کنستر نہیں مل رہا. آخر ایک نوجوان جب تھک ہار کر حاجی صاحب کے پاس بیٹھنے آیا تو حاجی صاحب سے پوچھا, حاجی صاحب آپ بیٹھے کس پر ہو؟ تو پتا چلا کہ پورے جہاز میں جس کنستر کو ڈھونڈ رہے تھے حاجی صاحب اسی کنستر میں بیٹھے ہوئے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہماری ناک کٹتی ہے کہ جب پورے گھر میں شور مچایا کہ میری چابی کہاں ہے, وہ چابی نہیں ملی. آخر کہا کہ تم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے, میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, جب باہر نکلے پتا چلا موٹر سائیکل میں لگی ہوئی ہماری چابی. تو یہ بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہماری اپنی ناک کٹتی ہے. ہمارے جو اس طرح کے جو انداز ہوتے ہیں اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس طرح شور مچانے سے آخر کیا وہ چیز پوری ہو جاتی ہے؟ پوری نہیں ہوتی. بسا اوقات جس جگہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے, ہمارا اس انداز سے اس ادارے کا, اپنے گھر کا بھی ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہم اس بات کو قطع نظر کہ ہمارے گھر میں جو ہماری شریک حیات ہے, بچوں کی امی ہے, وہ ہمارے سارے گھر کے معاملات پورے کرے, ہمارے لیے کپڑے دھوئے, ہمارے کپڑے استری کرے, ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے, ایون کہ ہمارے بچوں کو سنبھالے, ان سارے معاملات کو ہم یکسر بھلا دیتے ہیں اگر ہماری کوئی اپنی ہی چیز, اس کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہماری ہو. ہم ہی پرس اگر اپنے گھر میں بھول گئے, آفس میں بھول گئے, اور گھر آ کر ہم نے دوسرے دن جب اپنا پرس ڈھونڈا تو نہیں ہے, اب گھر والوں کو شور مچا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا پرس کہاں ہے, اور پرس نہیں ملا تو شور شرابہ کر کے نکلے, وہاں جیسے جا کر اپنے آفس کی دراز کھولی تو پرس نظر آیا. تو آ کر بھی ایسا شاید ہی کوئی کرتا ہو کہ معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میرا آفس میں ہی پرس رہ گیا تھا, میں خامہ کا شور مچانے لگا. لیکن بہرحال آج کا جو موضوع تھا وہ موضوع یہی ہے کہ ہم इस तरह की किसी परेशानी के आने पर अपने आप को संभालें। रास्ते में अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, अब बताएं उसमें गाड़ी का क्या कसूर, और वहीं पर मिल खड़े होकर कंपनियों को कोसने देना शुरू करें, या किसी बस में ही सफर कर रहे हैं तो बाइक चोरी हो गई। और ऐसा भी होता है कि बाइक चोरी नहीं होती है, बल्कि हमारे बाबुल मदीना शहर में तो ऐसा एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था कि हमारे एक मस्जिद के बाहर ही, ये इन्हीं दिनों की शायद कोई बात है कि एक साहब के इज्तिमाई कुर्बानी के लिए शायद वो जमा कराने आए थे पैसे, और पैसे जमा कराने आए, जैसे ही बाहर निकले उनके बाइक गायब। अब वो जो शोर शराबा हुआ कि भाई ये तो मस्जिद में ऐसा होता है तो फलाना होता है, अब जाहिर इस मौके पर भी शैतान अपना काम तो दिखाता होगा ना, और दीन के मामले में तो ज्यादा, जैसे कहीं अगर मस्जिद में गए और वहीं से चप्पल उड़ गए, अब जो मस्जिद के मामला या दीनी मामला पे बसाओ का हमारी जबान चलती होगी, कितना गुल खिलाती होगी। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि किसी और ने मस्जिद मतलब किसी से चाबी ली होगी, क्या चाबी दो मैं फलां काम करके आता हूं, और वो इत्तेफाक से जैसे ही उनकी गाड़ी में बैठ गए, चाबी लगाई तो चाबी भी लग गई, स्विच भी ऑन हो गया, गाड़ी लेकर चले गए वो। अब ये थाने में भी गए, पुलिस में गए, थोड़ी देर में वो मोटरसाइकिल चलाते वापस आ रहे हैं, भाई ये मोटरसाइकिल तो मेरी है। तो भाई तो फुलां की नहीं, फुलां की दूसरी थी, आप गलती से ले गए। तो पता चला कि इस तरह का भी कोई मामला हो जाए, इंसान अगर अपना हवास कायम रखेगा तो जब ही काम पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो इसका एक हल जो है इस पर सब्र करना है। वो चाहे बीमारी की सूरत में आए, कारोबारी हवाले से आए, किसी के दुनिया के जाने से आए, इंसान इन्हीं मामलात पे अपनी जिंदगी गुजारता है। तो अगर मुख्तलिफ बीमारियों, परेशानियों, तकलीफों और मुश्किल तरीन हालात में सब्र करना अगर हमें आ जाए तो इंशाल्लाह मसला भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा और हमें अजर व सवाब का खजाना भी हाथ आएगा। हमारे प्यारे आका बल्कि सईदा दाऊद आला नबी जना वाली सलातु सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, जो आदमी तेरी रिजा के हुसूल के लिए मुसीबतों पर सब्र करता है, उस परेशानी और गमगीन आदमी उस परेशान और गमगीन आदमी का बदला क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं उसे ईमान का लिबास पहनाऊंगा और कभी भी नहीं उतारूंगा। तो परेशानी मुसीबतों पर सब्र करने का एक जो आसान तरीका यह भी है कि इसके फजाइल ये जहन में रखे जाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा सब्र के फजाइल बयान किए गए हैं। चुनाचे पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। तर्जमा कंजुल ईमान, और जरूर हम सब्र करने वालों को उनका वो सिला देंगे जो उनके सबसे अच्छे काम के काबिल हो। और पारा 23 में इरशाद फरमाया, इन्नमा युवस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, साबिरों ही को उनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिनती। बल्कि एक रिवायत में यहां तक उलमा ने फरमाया कि साबिरों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और सदरुल फाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला ने इस आयत मुबारका के तहत फरमाते कि हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि हर नेकी करने वाले की नेकियों का वजन किया जाएगा सिवाय सब्र करने वालों के, कि उन्हें बेअंदाजा और बेहिसाब दिया जाएगा। और ये भी मरवी है कि असहाबे मुसीबत और वह बला हाजिर किए जाएंगे نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مصیبت آئی، ہم پر پریشانی آئی، اس میں رب تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ہم تو نہیں جانتے، اس میں رب تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ بھائی میرے سر میں درد ہوا، رب تعالیٰ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا، اس میں رب کی کیا حکمت ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. اور کبھی کبھی مصیبتیں نازل فرما کر رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے. لہذا ہم پر جو مصیبت آئی، کوئی ٹینشن آیا، کوئی پریشانی آئی، تو ہمارے بھلے کے لیے آئی، بہتری کے لیے آئی ہے، اگرچہ ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو ہم نہیں جانتے ہماری بہتری کس میں. اگر ہم مطلب کہیں پر جا رہے ہیں، ہم کہیں پر سفر میں ہیں اور ہم پر کوئی مصیبت آ گئی، اب ہم ٹینشن میں آ گئے کہ یار دیکھو یار میرا ٹائم ضائع ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا حادثہ ہونا تھا، اگر ہم اس وقت میں وہاں ہوتے تو اسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر کے آگے کے حادثے سے محفوظ فرما لیا. تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں برکت بھی ملتی ہے اور زندگی اس کی بڑی پرسکون گزرتی ہے، زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے. امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی قدس سرہ السامی کسی جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا اور اس کے کپڑے، جسم، ان سب پر کیچڑ لگ گیا. اب لوگ دیکھتے جا رہے تھے، گزرتے جا رہے تھے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا، کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی آئی، بچے کو دو تھپڑ مارے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دے دیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا تو جھومنے لگے، وجد آ گیا، فرمایا یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، توبہ و عبادت کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہربان ماں سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے زیادہ کہیں مہربان ہے، بعدوں کا سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ملا کس سے. اور بعدوں کا یہ بھی ایک بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، جیسے خاص کر کاروباری حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے کاروبار میں 2-5 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے، پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے، پورے خاندان کو ان کا نقصان ہو گیا. لیکن اگر 25-50 لاکھ کا فائدہ ہو جائے تو یہ تو گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ ہو جائے گی. اس طرح کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اگر 1-2 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، پورے خاندان کو پتا ہو جائے گا कि यार आजकल बड़ा जबरदस्त नुकसान हो गया इसको, लेकिन जो पिछले साल इतने लाखों करोड़ों रुपए कमाए उसका किसी से तस्करा नहीं होता। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मुसीबत आई, परेशानी आई, कुछ अरसा रहेगी, टेंशन दूर हो जाएगा, और जाहिर अगर सब्र करेंगे तो इसका अजर मिलेगा। और बाद औकात ये मुसीबतें जो है ना, ये इसका सबब हमारे करतूत भी होते हैं, हमारे करतूत भी होते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब में सबसे अफजल आयत की खबर देता हूं, जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। फिर आपने पारा 25 सूरत शूरा आयत नंबर 30 ये तिलावत फरमाई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम वयअफू अन कसीर। तर्जमाए कंजुल ईमान, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो इसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो मुआफ फरमा देता है। नबी पाक अली सलातो सलाम ने हमारे सामने ये आयत तिलावत करने के बाद इरशाद फरमाया कि ए अली, मैं इसकी तफसीर बयान करता हूं, तुम्हें दुनिया में जो बीमारी, सजा या कोई बला पहुंचती है वो इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे बहुत ज्यादा करीम है कि आखिरत में दोबारा सजा दे, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब दुनिया में तुमसे गुनाह मुआफ फरमा दिए तो वो इससे बहुत ज्यादा हलीम है कि मुआफ करने के बाद सजा दे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामियों, अगर दुनिया में कोई ऐसी मुसीबत आ भी जाए तो हम ये देखें कि आई कहां से। वो तो बड़ी मशहूर बात है ना कि महमूद बादशाह ने भरे दरबार में अपने चहीते गुलाम अयाज, इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, तो वो काश काट कर ककड़ी की बड़ी मोहब्बत से अयाज को दी, तो अयाज ने उसको खाई, फिर मोहब्बत से एक टुकड़ा काटा फिर दिया, अयाज ने फिर खा ली, फिर मोहब्बत से काटा फिर दिया, अयाज ने फिर खा ली। जब आखिरी टुकड़ा रह गया तो बादशाह ने खुद अपने मुंह में डाला। अब जैसे ही वो ककड़ी मुंह में डाली तो वो थी बड़ी कड़वी, तो फौरन बाहर निकाल दी और कहा कि अयाज, इतनी करवाहट है इसमें और तुम इतने मजे मजे ले लेकर खा रहे हो, तुम्हें इसकी करवाहट महसूस नहीं हुई? तो अयाज ने बड़ा मोहब्बत भरा जवाब दिया, कहने लगा, हुजूर, इन हाथों से हमेशा मीठा मीठा खाया है, इन हाथों से हमेशा मीठा मीठा खाया है, आज अगर मुझे कड़वा मिला तो मैंने तो ये देखा कि मिला कहां से, मिला कहां से। तो ये हम देखें कि अगर मुसीबत पहुंची, रंज पहुंचा, तकलीफ पहुंची, तो ये रब ताला की तरफ से है, सब्र करेंगे तो हमें अजर मिलेगा। और एक अहम बात वो ये कि अगर हम टेंशन लेते हैं, जरा ठंडे दिल से सोचिए कि क्या ये टेंशन लेना टेंशन से फरागत दिलाता है, ये तो और टेंशन में मुब्तला करेगा। जैसे अगर किसी को टेंशन हो, अचानक कोई कॉल आ जाए कि भाई घर पे जल्दी पहुंचे, बहुत इमरजेंसी है। अब ये बुलाने वाले को भी एहतियात तो करनी चाहिए, मगर चले अगर घर से ऐसी कॉल आ गई और हमने टेंशन में ही गाड़ी स्टार्ट की, टेंशन में ही इसको मोड़ा, टेंशन में ही दौड़ाया, आप बताएं एक्सीडेंट होने का एहतमाल है कि नहीं है? हो सकता है कि स्टार्ट ही होते ही मसला हो जाए, स्टार्ट होते ही मसला हो जाए। तो तहम्मुल से अगर अपने मामला को फेस करेंगे तो बसा औकात मसला हल हो जाता है। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि कई मर्तबा जो है वो इंसान गैर जरूरी जो अपने वो अंदाज इख्तियार करता है ना, उससे शर्मिंदा भी होता है। एक जगह पढ़ा था कि एक शख्स जो था वो अपने फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए गया, ड्राइवर साथ था। तो जब शॉपिंग सेंटर पहुंचे तो उसने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दी और कहा कि कितने बजे, दो बजे ना, आप ठीक 3:30 बजे यहां पहुंच जाएं। हम 3:30 बजे शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं और चलेंगे। ड्राइवर, ठीक है मैं फुला काम करा के आ जाता हूं। अब ड्राइवर चला गया, ये साहब अपनी शॉपिंग करते रहे। शॉपिंग करके जैसे ही शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले तो ड्राइवर मौजूद नहीं था। अब सेठ साहब का तो पारा फौरन चढ़ जाता है ना, फौरन मिलाया फोन, उसने फोन नहीं उठाया। जैसा आदमी है, अब उसने और गुस्सा करना शुरू किया, यहां तक कि फैमिली चक्कर लगा रहा है, फोन कर रहा है, वो फोन भी नहीं उठा रहा। आखिर 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसकी गाड़ी आ रही है। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा था, जैसे ही गाड़ी रोकी उसने, अब उसने कुछ बात नहीं की, बड़ी गुस्से के साथ उसने दरवाजा खोला, ड्राइवर का कलर पकड़ा, उसको खींचा, खुद सीट पर बैठा, फैमिली सारी बैठी, उसने स्टार्ट की और जैसे ही आगे बढ़ाया तो स्टीयरिंग हाथ में आ गया उसके। अब उसने ड्राइवर की तरफ देखा कि ये क्या है। कहा वो सर आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं काम कराने गया था तो वहां पर ही गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर अभी सही कराने बैठूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ला रहा था और आपका फोन आ रहा था तो इसीलिए स्टीयरिंग को छोड़ना नहीं था, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाकर ला रहा था कि किसी तरह आपको फैमिली को घर छोड़ दूं फिर मैं गाड़ी बना लूंगा। अब मैं जैसे ही आया तो आपने पूछा ही नहीं, मेरा गिरेबान पकड़ के बाहर निकाल दिया, अब तो इसने होना ही था। अब वो नाक कटी और ये जनाब टैक्सी में या दीगर किसी जरियों के अपने काम पर रवाना हुए। तो टेंशन ना लें, कोई भी ऐसा मामला दरपेश होता है तो फेस करें। किसी उस्ताद ने अपने स्टूडेंट्स को समझाया, किसी उस्ताद ने बड़ी प्यारी मिसाल देकर अपने स्टूडेंट्स को समझाया। एक पानी का गिलास लिया जिसमें पानी भरा हुआ था, थोड़ा आधा गिलास पानी से भरा हुआ था, उसने स्टूडेंट्स को समझाया कि इस गिलास में कितना पानी है, तो कहा भाई आधा भरा हुआ है। कहा अगर मैं इसको 2 मिनट लेकर खड़ा रहूं अपने हाथ में तो बताए क्या होगा। कहा कुछ नहीं होगा। कहा अगर यही गिलास में 2 घंटे लेकर खड़ा रहूं तो कहा कि आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। कहा अगर यही गिलास में लेकर 12 घंटे ऐसे ही रहूं तो आपका हाथ जो है ना वो अकड़ जाएगा। तो कहा बेटा यही है, इस 12 घंटे में इस गिलास में से पानी कम होगा। कहा नहीं। तो कहा यही मिसाल है कि इंसान को जब टेंशन आती है ना, अगर ये टेंशन लेकर खड़ा हो जाए 2 मिनट तो शायद इजी हो जाएगा, लेकिन अगर इसने 2 घंटे गुजारे टेंशन में तो तकलीफ में आएगा, और अगर यही काम उसने 12 घंटे तक किया तो परेशानी ज्यादा होगी। तो हम अपनी लाइफ पर भी गौर करें, अगर हम थोड़ा सा इजी हो जाए तो बाज औकात हो सकता है कि हमें जो है वो आसानी आगे मुयस्सर हो, लेकिन बाज औकात हम अपने मामलात को इतना खराब कर चुके होते हैं कि आगे जब आसानियां मिलने लग जाती है ना तो हमें उस वक्त हमारे हाथ से बाजी निकली हुई होती है। खानदान के भी यही मामलात होते हैं, रिश्तों के टूटने की भी बसा औकात ये मामलात होते हैं कि घर में भी अगर किसी बात पर लड़ाई हुई तो लड़ाई का आखिर जो बुनियाद होती है ना उसमें कोई सर पैर नहीं होता है। इंसान बाद में सोचता है, शर्मिंदा होता है कि काश मैं उस वक्त थोड़ा तहम्मुल में आ जाता, थोड़ा मैं अपने आप जज्बात को काबू में कर लेता तो शायद मेरे ये काम इतने खराब ना होते हैं। लेकिन होता यही है कि इंसान जब इस तरह का मामला करता है तो वो यही समझता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान मैं हूं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप बीमार हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करें, अगर आप बीमार हैं तो जरा मालूमात लें, हो सकता है आपसे ज्यादा बीमार आपकी अपनी मोहल्ले में होंगे, आपसे ज्यादा बीमार आपकी अपनी बिल्डिंग में होंगे। आप कारोबारी टेंशन में, आप समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मुसीबतों में और कारोबारी मुश्किलात में फंसा हूं, जरा बाजार का जायजा ले लें, हो सकता है आपसे ज्यादा कारोबारी मुसीबतों का शिकार लोग होंगे। आपको नौकरी का मसला है, हो सकता है आपसे ज्यादा मुसीबतों में मुब्तला होंगे, नौकरियों के मसाइल होंगे। तो जिंदगी का वो कौन सा शोभा है। मिसाल अगर किसी लड़की की शादी भी होती है और शादी होकर वो किसी घर में जाती है वो ये समझती है कि दुनिया के सारे दुख सारी तकलीफ मुझे आ गई। ऐसा नहीं है, आपसे ज्यादा भी मुश्किलात हैं। अगर आज बारिश की वजह से आपके घर की छत टपक पड़ी, आप इसमें वावेला करें, शोर शराबा करें, तो कई ऐसे भी तो हैं कि इस बारिश में किसी का पूरा घर गिर गया। आप सोचे, किसी का पूरा घर गिर गया। अगर आज आपके घर में कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई ऐसा इंतकाल हो गया, नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया, अब जाहिर है यह हादसा जरूर है, इंसान गमजदा जरूर होता है, लेकिन अगर अपने आप को संभाले तो बसा औकात वो परेशानी दूर हो जाती है, वक्त अच्छे हो जाते हैं। और अगर सब्र करना सीखना हो, अपने बुजुर्गों का, असलाफ का, इनकी जिंदगी का मुताला किया जाए, तो हमें एहसास होगा कि हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी मुसीबतों पर सब्र किया। खवातीन को अगर किसी मुश्किल का शिकार होती हैं, वो भी देखें कि जिंदगी में और दीगर खवातीन ने किस किस तरह से अपनी जिंदगी में सब्र किया। खुद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर मुसीबतें आजमाइशें आईं, उन्होंने सब्र किया। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सब्र के वाकयात मशहूर हैं, साहबा किराम अली रिदवान के सब्र के वाकयात मशहूर हैं, शहीदानो असीरान करबला इनके वाकयात तो सब्र के ऐसे हैं कि जिन्हें सुनकर बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। असलाफ के, बुजुर्गों के, जिंदगी के सब्र के वाकयात मतलब मशहूर हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम वावेला करते हैं, मुसीबतों का शिकवा करते हैं। और अगर इसकी मिसालें पढ़नी हो, मैं जरूर आपको दावत दूंगा अमीर अहले सुन्नत की किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, कि उस वक्त बंदा किस तरह से जबान से ऐसे अल्फाज निकालता है जिससे उसका ईमान जाया हो जाता है। और इसका इल्म हासिल करना जरूरी है। इस किताब को मुताला करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि अगर किसी को कोई भी ऐसी मुसीबत आए, परेशानी आए, तो बहरहाल उसमें उसको सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको भी सब्र की तौफीक अता फरमाए। तो कई हवालों से अगर मुआशरे में देखें तो लड़ाई झगड़ों के मामलात भी इसी वजह से होते हैं कि सब्र नहीं होता। राह चलते किसी का धक्का लग गया, अब बेख्तियार हमारे मुंह से निकलता है, अंधा है क्या? अब उसने जवाब देना है कि मैं अंधा हूं कि नहीं हूं। तो अब उसने आस्तीनें चढ़ानी है, पहले लफ्जा पाई, गालम गलो, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है, असलहा निकल जाता है, मार धाड़ हो जाती है, गाड़ी किसी तरह से अगर टकरा गई, तहम्मुल से अगर मामले को फेस करेंगे तो मसला हो जाएगा, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना, शोर शराबा करना, कई हवालों से बसा औकात हालात जो है वो परेशान कुन हो जाते। ट्रैफिक जाम हो जाए तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि इंसान सोच लेगा ये मसला कितनी देर में हल होगा, भाई मिसाल 12 मिनट में हल हो जाएगा, तो जेब से तस्वीर निकाल लें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें वावेला करते कि ट्रैफिक पुलिस को कुछ ख्याल नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, और बाद में जब आगे चल के देखते तो पता चला कि कोई बस ही कल्टी हो गई है, तो फिर अपने ऊपर अफसोस होता है कि यार खामखा में शोर मचा रहा था, ये तो मसला है। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तहम्मुल से, हौसले से अगर फेस करेंगे तो परेशानी हल हो जाती है। निगरान शूरा ने एक बयान किया, उसमें बड़ा प्यारा वाकया मैं आखिर में आपको अर्ज करता हूं कि एक बादशाह ने अपने वजीर को अपनी अंगूठी दी और कहा कि इस अंगूठी पर एक ऐसी तहरीर लिखवाएं कि अगर कभी मैं मुसीबत में देखूं उसको तो खुश हो जाऊं, अगर कभी मुसीबत में अंगूठी देखूं तो खुश हो जाऊं, और अगर खुशी में देखूं तो गमजदा हो जाऊं। तो वजीर था बड़ा अकलमंद, उसने बादशाह से अंगूठी ली और जुमला लिखवा दिया। वो जुमला क्या था? ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। अब खुशी में कोई देखता है, अरे यार ये वक्त गुजर जाएगा, जी हाँ खुशी भी हमेशा नहीं रहती है, ये वक्त खुशी का गुजर जाएगा। और अगर कभी टेंशन आएगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, ये वक्त गुजर जाएगा। तो परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती, खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती। जिंदगी को पुरसुकून गुजारना है, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, और खूब खूब नेकी की दावत को भी आम करें, और यही पैगाम अगर मुसलमानों में आम किया जाए, मुसलमानों की मुस्बत सोच बनाई जाए, तो बहुत सारे गुनाहों का सद्देबाब भी हो जाएगा। क्योंकि बदकिस्मती से आजकल अगर इस तरह की किसी टेंशन में लोग अफराद मुब्तला होते हैं, तो जो बेकार किस्म के लोग हैं, कोई इनको मुनशियात का मशवरा देता है, कोई शराब का रास्ता दिखाता है, कोई इनको क्लबों में ले जाता है, तो वो यूं अल्लाह की नाफरमानी करके और ज्यादा अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो हम मुसलमान हैं, अगर मुसीबत आई, परेशानी आई, सब्र करेंगे, तहम्मुल के साथ मामलात को फेस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए भी अजर व सवाब का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।